بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ آج کے کاریکرم کا آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ ہود کی 45ویں، 46ویں اور 47ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں۔ تلاوت کا شرح پراپت کر رہے ہیں شری میر زادہ واقفی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، ہے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور نشچے ہی تیرا وعدہ سچا ہے اور تو ہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ کہا، ہے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، وہ تو اششٹ کرم ہے، تو ایسی چیز کا مجھ سے سوال نہ کر جس کا تجھے کوئی گیان نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو اجانی لوگوں میں سے نہ ہو جا۔ کہا، ہے رب، मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इससे कि मैं तुझसे ऐसी चीज का सवाल करूँ जिसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, और यदि तूने मुझे क्षमा न किया और मुझ पर तूने दया न की तो मैं घाटा उठाने वालों में से हो जाऊंगा।
यह रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूं अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.com/hi। श्रोताओ, आज बुधवार है, आज़र की 30, जमादिल अव्वल की 26 और दिसंबर की 21 तारीख। हमारी इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा नोट कर लीजिए। श्रोताओ, आप सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके उपरांत कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद हम आपको साप्ताहिक कार्यक्रम सुनाएंगे आशा की किरण, और इसके बाद आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम आजकल। तो श्रोताओ, यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे हमारे इस सभा से अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। जॉर्डन में ईरान और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई है। ईरान और यूरोप के बीच हुई बातचीत में परमाणु वार्ता की बहाली के तरीकों पर चर्चा हुई। भारत में सरकार ने विपक्षी नेता राहुल गांधी की यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत पर जोर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति ने आम माफी का ऐलान किया है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। इस्लामी गणराज्य ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि जॉर्डन की यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से हुई। ईरान और सऊदी अरब के बीच कई क्षेत्रीय मामलों में मतभेद पाया जाता है और दोनों देशों के बीच इस समय कूटनीतिक संबंध नहीं है, मगर कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच बगदाद में वार्ता के कई दौर हुए हैं। अब जॉर्डन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात को एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान बगदाद सहयोग व साझेदारी सम्मेलन 2 में भाग लेने के लिए जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचे थे। इस सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इराक के प्रधानमंत्री अल सुदानी सहित कई देशों के नेता पहुंचे थे। सऊदी अरब ने इस सम्मेलन के लिए अपने विदेश मंत्री को भेजा था। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल ने जॉर्डन में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात में परमाणु वार्ता को कई महीनों के गतिरोध के बाद दोबारा आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वहीं परमाणु समझौते से एकतरफा तौर पर गैर कानूनी तरीके से निकल जाने और ईरान पर समझौते के उल्लंघन का बार बार आरोप लगाने वाले अमरीका ने कहा कि अब परमाणु मुद्दा उसके ध्यान का केंद्र नहीं है। बगदाद 2 कॉन्फ्रेंस के इतर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान और जोसेफ बोरेल की मुलाकात हुई। हालांकि इससे पहले ईरान और यूरोपीय संघ के संबंधों में इसलिए तनाव नजर आया कि यूरोपीय देश परमाणु समझौते पर अमल नहीं करना चाहते थे और उनकी इच्छा है कि ईरान एक पक्षीय रूप से अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करे, जिसके लिए ईरान तैयार नहीं है। यूरोप ने परमाणु मुद्दे के साथ मानवाधिकार का मुद्दा और कुछ दूसरे मसले भी उठा दिए और ईरान पर दबाव डालने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सका। यूरोप बार बार ये निराधार आरोप भी दोहरा रहा है कि यूक्रेन जंग में ईरान रूस की मदद कर रहा है, जिसका ईरान और रूस दोनों ने खंडन किया है।
विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने कहा कि ईरान कुछ महीने पहले तैयार होने वाले मसौदे के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है। वहीं अमरीका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कि अमरीका को ईरान के परमाणु समझौते के मसले में भविष्य में किसी प्रगति की उम्मीद नहीं है और इस समय यह विषय अमरीकी प्रशासन के ध्यान का केंद्र नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिया ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष कैथरीन कोलोना से मुलाकात में चेतावनी दी कि पेरिस तेहरान के आंतरिक मामलों में दखल न दे। बुधवार की सुबह अम्मान में बगदाद 2 कॉन्फ्रेंस के इतर अमीर अब्दुल्लाहिया ने एक ट्वीट में बताया कि उन्होंने अपनी फ्रांसीसी समकक्ष के साथ मुलाकात में ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के लिए फ्रांस की आलोचना की और इसे अस्वीकार्य बताया। भारत में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पालन करने की नसीहत कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से चलकर कश्मीर की ओर जा रही है, जो बुधवार को हरियाणा में दाखिल हुई और इस हफ्ते के आखिर में ये दिल्ली में दाखिल होने वाली है। राजनीतिक और प्रचारिक हलके राहुल गांधी की इस यात्रा को काफी महत्व दे रहे हैं और कामयाब मान रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी के नाम पत्र लिखकर कहा कि उनकी यात्रा जब राजस्थान में चल रही थी तब राजस्थान के 3 सांसदों पीपी चौधरी, निहाल चंद और देवजी पटेल ने उन्हें एक पत्र लिखकर कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की। मांडविया ने पत्र में लिखा कि इन सांसदों ने 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं का अनुरोध किया है। पहले बिंदु में यात्रा के दौरान कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है। इनमें मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने और सिर्फ कोविड वैक्सीनेटेड लोगों को ही यात्रा में भाग लेने के लिए कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि यात्रा से पहले और उसके बाद इसमें शामिल लोगों को आइसोलेट किया जाए। वहीं दूसरे बिंदु में राहुल गांधी से अपील की गई कि अगर कोविड गाइडलाइंस का पालन संभव न हो तो सार्वजनिक स्वास्थ्य इमरजेंसी की सूरत में देश हित में इस यात्रा को स्थगित कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए उनसे पूछा कि देश में इस समय कोरोना के लिए भारत सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के किन नियमों और प्रोटोकॉल की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार को राजस्थान और कर्नाटक में बीजेपी की यात्रा क्यों नहीं दिखाई दे रही है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने विश्वविद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तालिबान सरकार ने मंगलवार को यह ऐलान कर दिया कि पूरे देश में लड़कियों और महिलाओं के लिए सरकारी व निजी यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। तालिबान सरकार के इस फैसले पर कई देशों ने प्रतिक्रिया दिखाई। तालिबान के प्रवक्ता हेबतुल्ला अखुंदजादा ने शिक्षा मंत्रालय से कहा कि वो लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय बंद करने के आदेश को तत्काल लागू करें। तालिबान इससे पहले लड़कियों के लिए मिडिल और सेकेंडरी स्कूलों के दरवाजे बंद कर चुके हैं। सीरिया के राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2022 से पहले अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता लोगों के लिए आम माफी का ऐलान कर दिया है। सीरिया के राष्ट्रपति कार्यालय में जारी बयान में कहा गया है कि पिनल कानून के आर्टिकल 100 और 101 के तहत जो लोग भी दोषी पाए गए हैं उन्हें आम माफी दी जाती है। इस माफी का फायदा उन लोगों को नहीं होगा जो फरार हैं। अलबत्ता उनके लिए एक रास्ता ये रखा गया है कि अगर वे देश के भीतर हैं तो 3 महीने के अंदर और अगर देश के बाहर हैं तो 4 महीने के अंदर खुद को अदालत के हवाले करें। सीरिया के अल-तनफ मरुस्थल में अमरीकी सैनिकों के लिए काम करने वाले एक संगठन ने दरा के इलाके में दाइश के एक सरगना की कब्र खोदकर उसका शव अमरीकी सैनिकों के हवाले कर दिया। बगदाद अल-योम की रिपोर्ट के अनुसार दाइश के सरगना अबुल हसन हाशमी अल-करशी की लाश को अमरीकी सैनिकों के हवाले किया गया है। सूत्रों के हवाले से अखबार ने लिखा है कि दरा के जासिम शहर में दाइशी सरगना की कब्र थी जिसे 10 दिन पहले खोदकर लाश निकाल ली गई। 2022 की शुरुआत से अब तक ज़ायोनी शासन की जेलों में बंद कम से कम 4 फिलिस्तीनी कैदियों की मौत हो चुकी है। बुधवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के जेलों में बंद 4 फिलिस्तीनी कैदियों की शहादत ज़ायोनी अधिकारियों द्वारा दी जाने वाली यातनाओं और उनकी स्वास्थ्य जरूरतों को जानबूझकर नजरअंदाज करने के कारण हुई है। यूक्रेन युद्ध को 300 दिन पूरे होने के बाद इस देश के राष्ट्रपति अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ी सामरिक बैठक की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपनी वाशिंगटन यात्रा में अमेरिकी समकक्ष जो बाइडेन से मिलेंगे और कांग्रेस में भाषण देंगे, जबकि जो बाइडेन यूक्रेन के लिए नई सहायता का ऐलान करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति की प्रवक्ता ने कहा कि जब तक जरूरत होगी यूक्रेन को अमरीका सहायता देता रहेगा। प्रवक्ता ने कहा कि इस बार यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल भी दिए जाएंगे। युद्ध शुरू होने के बाद से जेलेंस्की की ये पहली विदेश यात्रा है। इससे पहले उन्होंने 19 फरवरी को म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के लिए यात्रा की थी। वहीं रूसी राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन हाउस का कहना है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई जिसमें इस साल सेना के ऑपरेशनों के नतीजों का जायजा लिया जा रहा है और आइंदा साल के लिए ऑपरेशनों का निर्धारण किया जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस ने मंगलवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिकॉर्ड को सामने लाने की स्वीकृति दे दी है। इस फैसले के बाद अमेरिका में सियासी बवाल होना तय है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने जिस पर फिलहाल डेमोक्रेटिक पार्टी का वर्चस्व है दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का फैसला दे दिया। इससे पहले कई घंटे तक जोरदार बहस चली। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
दोस्तों, मैं हूं रविश जैदी और आपका स्वागत है राजनैतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में। आज के कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे परमाणु समझौते को लेकर ईरानी विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ की नीति के प्रमुख के बीच हुई वार्ता के बारे में
मंगलवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में,
और फिर बात करेंगे दर दर भटकते रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में,
श्रीलंका की नौसेना ने बताया है,
और अंत में चलेंगे भारत जहां कोरोना महामारी का दोबारा खतरा मंडराने लगा है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उठाए गए सवाल के बारे में हमारे संवाददाता आपको बताएंगे।
चीन में भी एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर
तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जॉर्डन की राजधानी अम्मान में। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल के साथ हुई मुलाकात के बाद एक बार फिर परमाणु समझौते के पुनर्जीवित होने की आशा जताई है। इस संबंध में एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी सैयद मीसम।
मंगलवार को जॉर्डन की राजधानी अम्मान में बगदाद कॉन्फ्रेंस 2 के इधर यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल के साथ मुलाकात में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने 2015 परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से वार्ता की ताजा स्थिति का जायजा लिया। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने 2015 के परमाणु समझौते के अन्य पक्षों से रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और बहुपक्षीय समझौते को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से लंबे समय से रुकी हुई वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक राजनीतिक निर्णय लेने का आह्वान किया। उन्होंने वियना वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए ईरान की तत्परता जताई जो महीनों के कठिन और गहन प्रयासों और प्रस्तावों पैकेजों पर आधारित थी। उन्होंने समझौते में शामिल अन्य पक्षों से राजनीतिकरण से बचने और एक अच्छे समझौते तक पहुंचने के लिए आवश्यक राजनीतिक निर्णय लेने का आह्वान किया। इस मुलाकात में यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने हालिया महीनों में ईरान को लेकर यूरोपीय संघ के रुख का स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि परमाणु समझौता और परमाणु वार्ता दूसरे सभी मामलों से अलग है और ये संघ परमाणु वार्ता को परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बोरेल ने इस संबंध में एक ट्वीट में लिखा, हमने सहमति जताई कि संपर्क बनाए रखें और परमाणु समझौते को वियना वार्ता के आधार पर बहाल करें। ऐसा लगता है कि ईरान में दंगों के शांत होने से ब्रसल्स ने दंगों और अशांति से जो उम्मीद लगा रखी थी उससे उसे निराशा मिली है, जिसकी वजह से परमाणु समझौते की बहाली को लेकर यूरोपीय संघ के रुख में स्पष्ट बदलाव हुआ है। ये वही यूरोपीय संघ है जो कुछ दिन पहले तक ईरान में दंगों और दंगाइयों का समर्थन कर रहा था और देश में शांति की स्थापना के लिए तेहरान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की आलोचना कर रहा था। 12 दिसंबर को यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद एक बयान भी जारी किया गया था जिसमें ईरान से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की मांग की गई थी। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने दंगाइयों की गिरफ्तारी को रोके जाने पर बल दिया था। अमरीका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने ईरान में अशांति के बाद से ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और व्यापक दुष्प्रचार किया था, यहां तक कि दंगाइयों का समर्थन करते हुए परमाणु वार्ता को महत्वहीन बताते हुए दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब यही यूरोप है जिसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके बाद उसे फिर से परमाणु समझौते का महत्व समझ में आ रहा है।
और अब चर्चा करते हैं दुनिया भर में दर दर भटकते रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में। इस समय जिन शरणार्थी शिविरों में रोहिंग्या मुसलमान जीवन गुजार रहे हैं, वहां पर जीवन व्यतीत करने की सबसे कम संभावनाएं हैं। इस बारे में विस्तार से एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं हमारे साथी कायम रिजवी।
श्रीलंका की नौसेना ने बताया है कि उसने हिंद महासागर के उत्तरी तट से 104 रोहिंग्या मुसलमानों को मुक्ति दिलाई है। लगभग एक दशक से रोहिंग्या मुसलमान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पलायनकर्ताओं का जीवन गुजार रहे हैं। इनमें से अधिकांश बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में मौजूद हैं। जिन शरणार्थी शिविरों में रोहिंग्या मुसलमान जीवन गुजार रहे हैं, वहां पर जीवन व्यतीत करने की सबसे कम संभावनाएं पाई जाती हैं, विशेषकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। बांग्लादेश की सरकार ने यह घोषणा की है कि वो रोहिंग्या पलायनकर्ताओं को देश के सुदूर क्षेत्रों में स्थानांतरित करना चाहती है। इससे रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि रिपोर्टों में ये बताया गया है कि बांग्लादेश के सुदूर द्वीप एक प्रकार से निर्वासन क्षेत्र हैं, जहां पर जीवन की संभावनाएं बहुत कम हैं। शायद यही वजह है कि विश्व समुदाय ने इस बारे में बांग्लादेश को सचेत किया है। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार का ये कहना है कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों की उपस्थिति के कारण पैदा होने वाली आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय समस्याओं के कारण उसकी विश्व समुदाय की ओर से सहायता की जानी चाहिए। रोहिंग्या मुसलमानों की समस्याओं के संदर्भ में ये बात तो स्पष्ट है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार नामक क्षेत्र में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या रहते हैं, जहां पर संभावनाएं बहुत ही कम हैं। वहां पर रहने वालों के मन में अपने भविष्य को लेकर कोई आशा नहीं पाई जाती, क्योंकि म्यांमार में वे अपना सब कुछ लुटाकर जहां पहुंचे हैं, वहां पर जिंदगी की बुनियादी चीजें भी नहीं हैं। दूसरी ओर उनकी सहायता करने में बांग्लादेश की सरकार की अक्षमता ने उनको अधिक निराश किया है। पहले बांग्लादेश और म्यांमार की सरकारों के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के आधार पर परिस्थितियों के सामान्य होने पर रोहिंग्या मुसलमानों को धीरे धीरे उनके जन्म स्थल अर्थात राखीन भेज दिया जाएगा, जो म्यांमार का एक प्रांत है। रोहिंग्या मूल रूप से इसी प्रांत के निवासी हैं। म्यांमार की सरकार ने इस समझौते को व्यावहारिक रूप नहीं दिया, बल्कि वो तो अब भी राखीन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को जबरदस्ती वहां से भगाने की कोशिशें करती रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रोहिंग्या मुसलमानों को विश्व की ऐसी सबसे अत्याचारग्रस्त अल्पसंख्यक जाति बताया है, जो शरणार्थी शिविरों में अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन गुजार रही है। दुनिया में मानवाधिकारों के समर्थन का ढिंढोरा पीटने वाले भी रोहिंग्या मुसलमानों की सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी हैं। ये रवैया रोहिंग्या मुसलमानों को उनकी अपनी मातृभूमि से जबरदस्ती निकाल बाहर करने के लिए म्यांमार की सैनिक सरकार को अधिक दुस्साहसी बना रहा है। म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की संपत्ति पर वहां के बौद्ध अतिवादियों और सेना ने कब्जा कर रखा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के मौन के कारण पूरे विश्व के सामने रोहिंग्या मुसलमानों की जातीय सफाई की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से जो बच निकलते हैं उनको बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर अत्यंत विषम परिस्थितियों में जिंदगी गुजारनी पड़ रही है।
और अब रुख करते हैं भारत का। एक ओर चीन में जहां कोविड 19 ने फिर से तबाही मचानी शुरू कर दी है, वहीं इस खतरे को देखते हुए भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार से सवाल किया है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात में की गई रैलियों के समय कोरोना क्यों याद नहीं आया। इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता शमशाद काजमी।
चीन में भी एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भारत में भी सतर्कता बढ़ाई जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें स्थिति की गंभीरता से समीक्षा की गई। मंडाविया ने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हर प्रकार की स्थिति से निपटने को तैयार हैं। चीन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने लोगों को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क लगाने की सलाह दी है और हर सप्ताह कोरोना की स्थिति की समीक्षा का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से नए मामलों पर नजर रखने और जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यदि ऐसा संभव न हो तो यात्रा को देश हित में स्थगित कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि चूंकि कोरोना वायरस महामारी एक सार्वजनिक आपात स्थिति है, अतः भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस चिट्ठी को लेकर भाजपा पर पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात चुनाव के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया था। चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि मनसुख मंडाविया को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पसंद नहीं आ रही है, लेकिन लोग इसे पसंद कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं।
गुजरात में जब चुनाव हुई थी, मोदी जी घर घर गए थे, क्या मास्क लगा के क्या लोगों को सारे प्रोटोकॉल मानते हुए गए थे? मंडाविया के मैं पूछना चाहते हैं कि राहुल गांधी की पदयात्रा शायद आपको अच्छा नहीं लगते होंगे, लेकिन सारे हिंदुस्तान के लोग इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और इसके चलते बीजेपी की जो गोदी मीडिया के चलते जो प्रचार चलते थे उसमें भी अभी छेद आने लगी, क्योंकि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो।
कांग्रेसी नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी स्वास्थ्य मंत्री के पत्र पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन हमें कोई कोविड प्रोटोकॉल नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई प्रोटोकॉल लाती है तो हम उसका पालन करेंगे। टीकाकारों का कहना है कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर देश में सतर्कता बरतनी चाहिए और इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। शमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
दोस्तों, राजनीतिक चर्चा का ये दैनिक कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने सुना कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा, और अब प्रस्तुत है आपकी सेवा में हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण।
आशा आशा की किरण।
दोस्तों, साप्ताहिक कार्यक्रम आशा की किरण की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आपको अवश्य याद होगा कि पिछले कार्यक्रम में हमने कहा था कि महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि प्रलय के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे, तो जिनका कर्म पत्र उनके दाहिने हाथ में दिया जाएगा वे उसे पढ़ेंगे, खुशी और गर्व से कहेंगे कि अहले महशर मेरे कर्म पत्र को पढ़ो, मुझे पूरा विश्वास था कि प्रलय आएगा और हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा। इसी प्रकार पवित्र कुरान में विभिन्न स्थानों पर इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कुछ लोगों के कर्म पत्र उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे और जिन लोगों का नामायामाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा उनका ठिकाना नरक होगा। कितने बदनसीब वे लोग हैं जिनके कर्म पत्र उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे, उन्हें नरक में डाल दिया जाएगा। नरक कितना बुरा ठिकाना है। जो लोग नरक में जाएंगे उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी, वे हमेशा हमेशा नरक की दहकती आग में जलेंगे। वे नरक में न तो मरेंगे और न ही जिएंगे, मगर जो लोग स्वर्ग में जाएंगे वे हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे और उन्हें कभी भी मौत नहीं आएगी। वे हमेशा अपने पालनहार की समस्त नियमतों से लाभ उठाएंगे। वहाँ वो सब कुछ होगा जिसकी वे तमन्ना करेंगे। पैगम्बर इस्लाम के पौत्र हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम फरमाते हैं, जमीन उस इमाम से कभी भी खाली नहीं रहेगी जो हलाल को हलाल और हराम को हराम करार देगा। और ये महान ईश्वर की उस बात का अर्थ है जिसमें वो कहता है कि प्रलय के दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। बशीर नाम का व्यक्ति इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के हवाले से कहता है कि इमाम कहते हैं, प्रलय के दिन बहुत से ऐसे इमाम आएंगे जो अपने अनुयायियों पर लानत करेंगे और अनुयायी व अनुसरणकर्ता भी अपने इमामों पर लानत करेंगे। हम पैगम्बर इस्लाम के वंश हैं, हमारी माँ फातिमा हैं और ईश्वर ने जो समस्त पैगम्बरों को दिया है उसे पैगम्बर इस्लाम को भी दिया है। इसी प्रकार इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ईश्वर की सौगंध तुम ईश्वरीय धर्म पर हो। उसके बाद उन्होंने पवित्र कुरान के सूरह इसरा की उस आयत की तिलावत की जिसमें महान ईश्वर कहता है, प्रलय के दिन हम समस्त लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। उसके बाद इमाम ने फरमाया, हजरत अली अलैहिस्सलाम हमारे इमाम हैं, पैगम्बर इस्लाम भी हमारे इमाम हैं। दोस्तों, रिवायत में है कि प्रलय के दिन कहा जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं, तो कोई जवाब नहीं आएगा, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों के अलावा कोई खड़ा नहीं होगा और दूसरे दलों को नरक की ओर भेजा जाएगा। इसी प्रकार एक अन्य रिवायत में है कि प्रलय के दिन हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम और उनके वंश के इमामों से कहा जाएगा कि आप और आपके चाहने वाले पूरे सिरात से गुजर जाएं और हिसाब किताब के बिना स्वर्ग में दाखिल हो जाएं। और उसके बाद बुराई के इमामों से कहा जाएगी कि तुम अपने अनुयायियों का हाथ पकड़ो और किसी हिसाब किताब के बिना जहन्नम में दाखिल हो जाओ। पैगम्बर इस्लाम की एक हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं, मेरे बाद 12 इमाम हैं, उनमें सबसे पहले इमाम अली इब्ने अबी तालिब और अंतिम कायम अर्थात महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम हैं। वे सब मेरे बाद मेरे उत्तराधिकारी हैं और मेरे बाद मेरी उम्मत के ईश्वरीय प्रतिनिधि हैं। पैगम्बर इस्लाम की हदीस से भली भांति समझा जा सकता है कि पैगम्बर इस्लाम के बाद उनके उत्तराधिकारी 12 होंगे, न कम न ज्यादा। इसी तरह आपने फरमाया है कि उनमें सबसे अंतिम कायम यानी महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम होंगे। इसी प्रकार पैगम्बर इस्लाम ने एक अन्य हदीस में कहा है कि महामुक्तिदाता हमारे वंश से होगा यानी حضرت علی علیہ السلام اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے اور اس بارے میں کوئی مت بھید نہیں ہے۔ اسی پرکار پیغمبر اسلام ایک انیہ حدیث میں فرماتے ہیں، نہیں سندیہ مہدی میری نسل سے اور ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور وہ انتیم سمے میں آئے گا، اس کے لیے آسمان سے ورشہ ہوگی، زمین اور پیداوار اس کے لیے کرے گی اور وہ زمین کو اس طرح سے نیائے سے بھر دے گا جس طرح وہ انیائے و اتیاچار سے بھری ہوگی۔ ایک انیہ حدیث میں آیا ہے کہ مہامکتی داتا پیغمبر اسلام کے ہم نام ہوں گے اور اگر دنیا کو ختم ہونے میں ایک دن سے بھی ادھک کا سمے نہیں بچا ہوگا تو مہان ایشور دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میری نسل سے ایک ویکتی آئے گا اور وہ دنیا کو اس طرح سے نیائے سے بھر دے گا جس طرح وہ انیائے سے بھری ہوگی۔
آشا کی کرن۔ مانوتا کے موکش داتا امام مہدی علیہ السلام پر سٹیک بحث پر آدھارت کارکرم آشا کی کرن۔ ہر ہفتے بدھوار کو
دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ، امام اور اپنا اتراधिकारी نہیں بنایا اور یہ کام امت کے حوالے کر دیا۔ اس سوال کے جواب میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں ہی بارمبار کہا تھا کہ میرے بعد میرے اتراधिकारी حضرت علی بن ابی طالب ہوں گے اور ان کے بعد امام حسن اور امام حسین اور نو اتراधिकारी امام حسن علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ یعنی پیغمبر اسلام نے اپنے جیون میں ہی بتا دیا تھا کہ میرا اتراधिकारी کون ہوگا اور یہ کار امت کے حوالے نہیں کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر ان کے بعد کے ہر نبی نے مرنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بعد میرا اتراधिकारी کون ہوگا اور یہ کار کسی بھی نبی و پیغمبر نے امت کے حوالے نہیں کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پوتر قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ کسی بھی پیغمبر نے اپنی مرضی سے اپنا اتراधिकारी نہیں بنایا ہے اور اسے اس بات کا ادھیکار بھی نہیں ہے۔ ہر پیغمبر نے مہان ایشور کے آدیش سے اپنے اتراधिकारी کے نام کو بتایا ہے، نہ کہ بنایا ہے۔ بتانے اور بنانے میں زمین آسمان کا انتر ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، انہیں میں سے ایک ویکتی ڈاکٹر ہے۔ اسی دوران ایک اجنبی ویکتی آتا ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ ڈاکٹر کون ہے، تو وہ پوچھے گا کہ تم میں سے ڈاکٹر کون ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ یہ ویکتی ڈاکٹر ہے تو بتانے والے نے ڈاکٹر کو بتایا ہے، نہ کہ بنایا ہے۔ اسی پرکار ہر پیغمبر نے کیول اپنا اتراधिकारी بتایا ہے، نہ کہ بنایا ہے، اور اتراधिकारी کے چین کا ارتھ امت پر نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنے بعد کسی کو اپنا اتراधिकारी نہیں بنایا ہے، تو واسطو میں اس پرکار کی بات وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں پوتر قرآن کی صحیح جانکاری نہیں ہے۔ دوستو، مہان ایشور پوتر قرآن کے سورہ نساء کی 59ویں آیت میں کہتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، اللہ، رسول اور تم میں جو صاحبان امر ہیں ان کے آدیشوں کا پالن کرو۔ پیغمبر اسلام کے ایک نشٹھاوان صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری پوتر قرآن کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہتے ہیں، ہے ایشوری دود، ہم اللہ اور اس کے رسول کو سمجھ گئے، پرنتو کون لوگ صاحبان امر ہیں جن کے آدیشوں کے پالن کا اللہ آپ کے اور اپنے آدیشوں کے پالن کے ساتھ کہہ رہا ہے؟ ان کے جواب میں پیغمبر اسلام نے فرمایا، وہ میرے بعد میرے اتراधिकारी اور مسلمانوں کے امام ہیں اور ان میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب ہیں اور ان کے بعد حسن، حسین، علی بن حسین، محمد بن علی ہیں، کہ وہ तौरात में बाकिर के नाम से जाना जाता है, और जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो तुम उसे देखोगे, और जब भी उसे देखना मेरा सलाम कह देना। मोहम्मद बिन अली के बाद जाफर बिन मोहम्मद, मूसा बिन जाफर, अली बिन मूसा, मोहम्मद बिन अली, अली बिन मोहम्मद, हसन बिन अली, और उसके बाद उसका बेटा मेरा हमनाम होगा। वो है जो लोगों की नज़रों से ओझल हो जाएगा, और उसका लोगों की नज़रों से ओझल होना लंबा होगा, यहाँ तक कि जिन लोगों का ईमान पक्का होगा उन्हीं लोगों का ईमान उसके गायब होने पर बाकी रहेगा। दोस्तों, कार्यक्रम के इस भाग में हम महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करना चाहते हैं। महान ईश्वर पवित्र कुरान के सूरह अहज़ाब की 33वीं आयत में बल देकर कहता है, अल्लाह आप अहले बैत को हर प्रकार की अपवित्रता से उस तरह पवित्र रखना चाहता है जिस तरह पवित्र रहने का हक है। पवित्र कुरान की इस आयत ने अहले बैत की पवित्रता पर मोहर लगा दी है, और अहले बैत में पैगंबर इस्लाम के समस्त पवित्र और मासूम परिजन शामिल हैं, और महामुक्तिदाता भी उन्हीं में से एक हैं। दूसरे शब्दों में महामुक्तिदाता भी हर प्रकार के दोष, कमी और अपवित्रता से पवित्र हैं। वो महाज्ञानी हैं, क्योंकि अज्ञानी होना दोष व कमी है, और महान ईश्वर ने अहले बैत को हर प्रकार की कमी, गंदगी और दोष से पवित्र रखा है। दोस्तों, महामुक्तिदाता इमाम महदी अलैहिस्सलाम दानी, त्यागी, अमीन, मृदुभाषी, सारांश ये कि वो समस्त सद्गुणों की प्रतिमूर्ति हैं। वो न्याय सहित समस्त सद्गुणों से सुसज्जित हैं। वो ईश्वरीय विशेषताओं और सद्गुणों की शोभा हैं। वो सद्गुणों और अच्छाइयों के स्रोत हैं। वो भी समस्त पैगंबरों और इमामों की भांति मासूम हैं, यानी हर प्रकार के पाप से पवित्र हैं। वो न केवल किसी प्रकार का पाप नहीं करते हैं, बल्कि पापों के बारे में सोचते भी नहीं। यहाँ कोई ये प्रश्न कर सकता है कि ये कैसे संभव है कि वो पापों के बारे में सोचते भी नहीं। उसका जवाब बहुत ही आसान है। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने अपने माता पिता का मांस खाने के बारे में सोचा? हरगिज नहीं, क्योंकि ये बहुत ही घटिया, नीच व तुच्छ कार्य है। जिस तरह से आम इंसान घटिया व तुच्छ काम के बारे में सोचता भी नहीं, उसी तरह महामुक्तिदाता भी किसी गुनाह के बारे में सोचते भी नहीं, क्योंकि पाप वास्तव में एक प्रकार की गंदगी व घटिया काम है। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बारे में महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि तुम चाहते ही नहीं मगर ये कि जो अल्लाह चाहता है। अहले बैत के बारे में ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो गुनाह करेंगे, ये तो वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हुआ।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, आपने कार्यक्रम आशा की किरण सुना, और अब प्रस्तुत है सभा का अंतिम कार्यक्रम आजकल।
आजकल
दोस्तों, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम ईरान की अर्थव्यवस्था में रोजगार पैदा करने वाले नॉलेज बेस्ड प्रोडक्शन की भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आएगा। हमारे साथ बने रहें।
دوستو، ہجری شمسی کیلنڈر کے نئے سال 1401 کی شروعات میں اسلامی کرانتی کے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس سال کا نام روزگار پیدا کرنے والا نالج بیسڈ پروڈکشن رکھا تھا۔ سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ پچھلے برسوں میں ہم نے ہر سال کے نعرے کے طور پر ایک وشے چنا۔ اس کا ادیش یہ ہے کہ ادھیکاری بنیادی طور پر سرکار اور پھر اس کے بعد سنسد اور نیائے پالیکا، اسی طرح جہاں معاملہ سوئم جنتا عوام سے جڑا ہوا ہو، وہاں جنتا اسی خاص لکش کی دشا میں آگے بڑھیں۔ کچھ برسوں میں اس میدان میں اچھی کامیابیاں حاصل ہوئیں، حالانکہ کچھ برسوں میں کچھ جگہوں پر کمی بھی ہوئی۔ سن 1400 میں ہم نے پیداوار، سمرتھن اور رکاوٹوں کے نوارن کو وشے بنایا۔ اپیکشاکرت روپ سے اچھے کام بھی ہوئے جو اب بھی جاری ہیں اور آگے بھی جاری رہنا چاہیے۔ ان برسوں میں میں نے سال کے نعرے کے لیے بنیادی طور پر پیداوار کو کسی شرط یا وشیشتا کے ساتھ کیندر میں رکھا۔ وجہ یہ ہے کہ پیداوار دیش کی آرتھک مشکلوں کی حل کی کنجی ہے۔ پیداوار واسطو میں دیش کے لیے آرتھک کٹھنائیوں اور سمسیاؤں سے باہر نکلنے کا مکھ راستہ ہے۔ یعنی دیش کے اہم آرتھک مدوں کو پیداوار کا وشے، راشٹریہ پیداوار کا چلن اور راشٹریہ پیداوار کا وکاس حل کر سکتا ہے۔ پیداوار کا سوبھاؤ یہی ہے، اسی لیے ہم نے پیداوار کے وشے پر وشیش بل دیا ہے۔ اس سے آرتھک وکاس بھی بڑھتا ہے، روزگار پیدا ہوتا ہے، انفلیشن بھی کم آتی ہے، پرتی ویکتی آمدنی بڑھتی ہے، عام حالات میں بہتری آتی ہے۔ آج دنیا میں یہ اسپشٹ روپ سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایک نئے پرکار کی ارتھ ویوستھا ابھر رہی ہے جو دیشوں کے آرتھک وکاس اور ان وبھن کھیتروں میں وکاس کے لیے ایک الگ آدھار پردھان کرتی ہے۔ یہ ارتھ ویوستھا جسے نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کے روپ میں جانا جاتا ہے، ویشویکرن گیان کے وکاس اور وکاس کی پرسپر کریا کا پریرام ہے۔ نالج بیسڈ سماج کی کچھ سب سے مہتوپورن وشیشتائیں ہیں: گیان تک پہنچ وویدھتا، گیان کے سبھی روپوں پر زور، سبھی پیڑھیوں پر دھیان، سماج میں سیکھنے کی بھاؤنا کا سنستھانیکرن، ایک استھائی سنسکرتی کے روپ میں نواچار کا پریورتن اور نئی سوچنا اور سنچار پرودیوگکیوں کا وستار۔ نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کے چار بنیادی استمبھ ہیں: پہلے مانو سنسادھن کا پرشکشن، اور دوسرے وکاس نواچار اور اوشکار، تیسرے گتیشیل سوچنا بنیادی ڈھانچے، اور چوتھے آرتھک پروتساہن۔ نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کو وش ارتھ ویوستھا میں ایک نئے درشٹی کوڑ کے روپ میں پیش کیا گیا ہے جو کرشی اور اودیوگک ارتھ ویوستھاؤں کے لیے ایک اپیوکت اور آوشک وکلپ ہے۔ شوت کے پرینام بتاتے ہیں کہ نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کھیتری دیشوں کے بیچ ویاپار کی ماترا میں وردھی کے ساتھ ان دیشوں میں اترکت مول اتپادن کے پرواہ کا سکاراتمک پرواؤ کے علاوہ آرتھک وکاس میں مدد کرنے کے لیے ایک اتکرشٹ شمتا مانی جاتی ہے، اور اسلامی دیشوں کی پرگتی میں اہم بھومکا نبھانے میں مہتوپورن رول ادا کرتی ہے۔ دوستوں، نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کے کھیتر میں پرمکھ اسلامی دیشوں کا ایتہاسک ریکارڈ کا کرم اس پرکار ہے: ملیشیا، سنگاپور، ترکی، ایران اور لبنان۔ 20ویں شتابدی کے انتم دشکوں کے دوران ملیشیا اور سنگاپور دوارا اچانک اپنائی گئی نیتیوں اور بڑے ایجنڈوں کے ساتھ ان دونوں دیشوں نے نالج بیسڈ ارتھ ویوستھا کو پراپت کرنے میں اپنی پرگتی کا مکھ لکش نردھارت کیا۔ وہیں ترکی اور ایران نے دھیرے دھیرے اس دشا میں قدم اٹھائے اور
काफी प्रगति हासिल की है। इन देशों में से प्रत्येक ने शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के विकास से लेकर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने और एक रणनीतिक मानचित्र के रूप में अपस्ट्रीम दस्तावेज तैयार करने तक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकारी उपाय किए हैं। नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के पथ पर कदम रखने की पहली शर्त राजनीतिक इच्छा शक्ति है। इन सभी देशों के अनुभवों में नेतृत्व और मजबूत राजनीतिक ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के ढांचे को प्राप्त करने के लिए कई तरह के सुधार शुरू करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। अधिकांश विकासशील देशों के अनुभवों से पता चलता है कि सरकार ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की दिशा में अहम कदम उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी तरह सरकारों ने हमेशा नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की नींव में निजी क्षेत्र के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है, क्योंकि नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के लिए निजी क्षेत्र की बड़ी उपस्थिति की आवश्यकता होती है। इस्लामी देशों के पास आर्थिक, भौगोलिक, भू राजनीतिक, भू रणनीतिक, भू आर्थिक और भू सांस्कृतिक विशेष अधिकार हैं। इस्लामी देशों की सबसे महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं दुनिया में युवा आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा होना, सोने, तेल, गैस और खनिजों सहित कीमती प्राकृतिक भंडार को जोड़ना, कृषि उत्पादों के उत्पादन में सापेक्ष लाभ और समृद्ध बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत। नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के महत्व और आर्थिक क्षेत्र में इस्लामी देशों के सामने आने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इन कंपनियों का ध्यान एजेंडे में रखा गया था, लेकिन इनमें से अधिकांश देश अभी भी रास्ते की शुरुआत में हैं। नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता के रूप में जो ध्यान देता है वो इस्लामी देशों से उल्लेखित फायदे हैं। ये देश विशेष रूप से पेट्रोकेमिकल उद्योगों के क्षेत्र में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की क्षमताओं से लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अधिकांश इस्लामी देशों में समृद्ध ऊर्जा संसाधन हैं और उन्हें दुनिया में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादन और निर्यात वाले देशों में गिना जाता है। इस बीच इस्लामी देशों ने विशेष रूप से पिछले दो दशकों में तकनीकी, पर्यटन और शहरी विकास के क्षेत्रों में बहुत अधिक निवेश किया और अपने आर्थिक संसाधनों में विविधता लाने और ऊर्जा संबंधित आय से खुद को दूर करने की कोशिश की है। संयुक्त अरब इमारात और कतर ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कई विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने में कामयाब रहे हैं। इस बीच सऊदी अरब ने भी आर्थिक दृष्टि के अनुरूप 20-30 नियम परियोजना शुरू करके नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अपनी इच्छा दिखाई है। नियम एक बड़ी परियोजना है जिसमें स्मार्ट शहरों का निर्माण किया जाना है जो स्वच्छ ऊर्जा पर निर्भर होंगे और अन्य महाद्वीपों के लिए निवेश प्रदान करेंगे। इसी तरह एक स्थायी अर्थव्यवस्था के साथ एक अग्रणीय देश बनने के संयुक्त अरब इमारात के सपने के अनुरूप इस देश के शासक नॉलेज बेस्ड कंपनियों में उत्पादन बाधाओं को दूर करने के लिए योजनाओं और सुधारों को लगातार लागू कर रहे हैं। वर्ष 2019 में इस देश ने इस क्षेत्र में 5 नए कानून बनाए हैं। 1 जुलाई 2019 से संयुक्त अरब इमारात के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था के लिए 1,500 सरकारी सेवाओं की लागत में 50% की कमी की घोषणा की। साथ ही जिन स्टार्टअप में 5 पूर्णकालिक कर्मचारी या उससे कम हैं, उन्हें 2 साल तक के लिए 100% सब्सिडी मिलेगी। अरब देशों ने भी शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, विकास और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करने की इच्छा दिखाई है, जिसका उद्देश्य उत्पादकता, प्रतिस धामात्मक के स्तर में लगातार सुधार करना और नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था की संरचना के परिवर्तन के लिए एक उपयुक्त मंच बनाना है। ये देश इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अरब देशों में नॉलेज बेस्ड अर्थव्यवस्था का समर्थन अरबों की वैज्ञानिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आधार प्रदान करता है और छात्रों को और समाज के सदस्यों को उन विज्ञानों और विशेष ध्यान देने का कारण बनता है जो आर्थिक विकास की गारंटी देते हैं। कुल मिलाकर अरब देशों के लिए ये असामान्य बात नहीं है कि अपने सामने खड़ी नई चुनौतियों को स्वीकार करके वे अपनी आर्थिक संरचना में व्यापक बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन देशों की नई पीढ़ी की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं में बहुत परिवर्तन आ गया है। नई पीढ़ी की आमद के साथ ही इन देशों की सामाजिक आर्थिक मांग भी बदल रही है। फ़ारस की खाड़ी के कोई देश जो पहले तेल के कारोबार का बड़ा खिलाड़ी हुआ करते थे वो अब अपने इन कुदरती संसाधनों के अहंकार में नहीं रह सकते। इसकी वजह यह है कि तेल खरीदने वाले देश अपने यहाँ तेल की मांग कम करने के लिए नई नई तकनीकें ईजाद कर रहे हैं। इसकी वजह से वो जो तेल इनका कच्चे तेल के उत्पादक देशों से खरीद रहे थे उसकी मात्रा में भारी कमी आ गई है। ऐसे में कच्चा तेल बेचकर कभी अमीर बने देशों को अगर खुद को बचाए रखना है तो उसे भी बदलते हुए वक्त के हिसाब से अपनी आर्थिक व्यवस्था और प्राथमिकताओं में बदलाव लाना ही होगा। इसके लिए उसे नए नए प्रयास करने होंगे, अपनी जनता के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलने होंगे, तभी वो अपने विकास और समृद्ध को बचा सकेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का समय अब यहीं समाप्त होता है, हमें अनुमति दें।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल के साथ ही हमारी ये सभा भी समाप्त होती है। अगली मुलाकात तक अहमद अब्बास और साथियों को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।